एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम रुख कर रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे कह सकते हैं महासागर की ओर, जिसकी लहरों में शोहरत की चमक भी है और विवादों की गहराई भी।
रुडयार्ड किपलिंग।
हाँ, रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़ा नाम।
बिल्कुल, 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेज लेखक।
पहले अंग्रेज, हाँ।
जन्म 1865 में बॉम्बे में, जब ब्रिटिश भारत अपने शिखर पर था, और निधन 1936 में लंदन में, जब उसी साम्राज्य का सूर्य ढल रहा था।
पूरा एक दौर देखा उन्होंने, जन्म से लेके अंत तक।
तो आखिर किपलिंग में ऐसा क्या है कि आज भी उनकी कहानियां दिलों को छूती हैं और दिमाग को झकझोरती हैं? क्यों उन पर इतनी बहस होती है? आज हम इन्हीं पहलुओं को थोड़ा खंगालेंगे हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए। हाँ, किपलिंग वाकई एक दिलचस्प शख्सियत हैं। उन्हें एक पुल की तरह देखा जा सकता है, मतलब विक्टोरियन युग के आत्मविश्वास और जो आधुनिक युग आ रहा था उसकी बेचैनियों के बीच खड़े।
अच्छा,
वो न सिर्फ साम्राज्य के गवाह थे बल्कि उसके आप कह सकते हैं तराने गाने वालों में से भी थे, और शायद अनजाने में ही उसकी उलझनों को भी सामने ले आए। ये भी सोचना जरूरी है कि उनका जन्म 1857 के गदर के सिर्फ 8 साल बाद हुआ था।
हाँ,
वो माहौल तो रहा ही होगा।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा उस जमाने को समझते हैं जिसमें किपलिंग लिख रहे थे। ये दौर था करीब 1880 से 1930 तक का, जबरदस्त उथल पुथल का समय।
बिल्कुल, विक्टोरियन युग वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आधुनिकता मॉडर्निटी वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।
और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति वो तो जोरों पर थी, टेलीग्राफ, स्टीमशिप।
हाँ, दुनिया छोटी हो रही थी और ब्रिटिश साम्राज्य वो तो दुनिया के कोने कोने में फैल रहा था।
और इसी विस्तार के साथ एक खास किस्म की सोच भी पनप रही थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो देखो वैज्ञानिक तरक्की थी, लेकिन दूसरी तरफ जिसे सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, मतलब ये मानना कि समाज में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है।
अच्छा,
और इस सोच ने कहीं ना कहीं नस्लीय श्रेष्ठता की भावना को भी हवा दी। किपलिंग का नजरिया भी वो इससे अछूता नहीं था। वो अक्सर ब्रिटिश शासन को एक एक जरूरी, एक स्वाभाविक विकास मानते थे।
और साहित्यिक दुनिया में क्या चल रहा था उस वक्त?
वो भी बदल रही थी। थॉमस हार्डी का रियलिज्म था, ऑस्कर वाइल्ड का एस्थेटिसिज्म था, लेकिन किपलिंग अपनी सीधी सपाट, मतलब पत्रकारिता वाली स्टाइल,
हाँ,
और अनोखी सेटिंग जैसे भारत और आम आदमी की जबान, खासकर सिपाही की जबान, कॉकनी, उसके इस्तेमाल से बिल्कुल अलग दिखते थे।
उनके समकालीन भी तो बड़े नाम थे, एचजी वेल्स।
हाँ, एचजी वेल्स विज्ञान कथाओं के बादशाह, जिनसे किपलिंग के राजनीतिक मतभेद भी थे खुलकर।
और आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम्स वाले।
बिल्कुल, कहानियों के महारथी। और जोसेफ कॉनराड भी थे, उन्होंने भी साम्राज्य की बात की, पर जरा जरा अलग नजरिए से, उसके अंधेरे कोनों को ज्यादा दिखाया। और जो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं थीं, उनका असर भी तो पड़ा होगा उनके लेखन पर।
हाँ जरूर, 1857 की यादें तो होंगी। फिर दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुए, कहते हैं उसने किपलिंग को साम्राज्यवाद की कीमत का एहसास कराया।
हाँ, और जर्मनी के साथ जो नेवल रेस चल रही थी, नौसेना की होड़, उससे भी वो चिंतित थे।
और फिर सबसे बड़ा झटका, पहला विश्व युद्ध।
हाँ, वो तो एक ऐसी तबाही थी जिसने उनकी पूरी पीढ़ी को और खुद उनके परिवार को तोड़कर रख दिया।
चलिए अब जरा किपलिंग के निजी सफर पर आते हैं। शुरुआती 6 साल बॉम्बे में, कैसा था वो अनुभव?
वो उसे बाद में किसी जन्नत की तरह याद करते थे। वो माहौल में एकदम रचे बसे थे। हिंदी और उर्दू वो अंग्रेजी से पहले सीखी।
अच्छा।
हाँ, और उनकी देखभाल करने वालों में भारतीय नौकर और उनकी आया, वो उन्हें मीता कहते थे। वो बहुत अहम थीं। कहते हैं कहानियों का जादू उन्होंने वहीं से सीखा।
लेकिन ये जन्नत ज्यादा दिन नहीं रही।
नहीं, 1871 में सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें और उनकी बहन को इंग्लैंड भेज दिया गया, साउथ सी में मिसेस हॉलोवे के पास।
और वो अनुभव अच्छा नहीं था, सुना है?
बिल्कुल नहीं। किपलिंग ने बाद में उस घर को हाउस ऑफ डेसोलेशन कहा, मतलब उदासी का घर। 5 साल वहां गुजारे, भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल थे, सख्त अनुशासन।
ओह,
ये अनुभव उनके मन पर एक गहरा जख्म छोड़ गया, जिसने उनमें जिंदगी भर अकेलेपन का एहसास और व्यवस्था, कानून की एक सख्त जरूरत का भाव पैदा किया।
इसका जिक्र उनकी कहानियों में भी आता है।
हाँ, उनकी शुरुआती कहानी है बा बा ब्लैक शीप, उसमें ये दर्द साफ झलकता है।
वीर कॉलेज?
हाँ, उसके बाद उन्हें डेवन के यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज भेजा गया। ये स्कूल खास फौजी और औपनिवेशिक अफसरों के बच्चों के लिए था।
वहाँ का माहौल अलग होगा क्या?
हाँ, वहाँ नियम थे, अनुशासन था और लड़कों के बीच एक तरह की भाईचारे वाली दुनिया थी, जिसका जिक्र वो बाद में स्टॉकी एंड को की कहानियों में करते हैं।
लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए वो?
नहीं, पैसों की कमी थी तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज नहीं जा पाए।
तो फिर?
तो 17 साल की उम्र में 1882 में वो पत्रकार बनने भारत लौट आए, लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट अखबार में।
पिता वहीं थे ना उनके?
हाँ, उनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग, वो खुद कलाकार और विद्वान थे, लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे उस वक्त। उनका भी किपलिंग पर गहरा असर था।
तो भारत में ये जो अगले 7 साल थे
वो उनके लिए असली यूनिवर्सिटी साबित हुए। उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बहुत करीब से देखा, फौजी बैरकों से लेकर वाइसरॉय के दफ्तरों तक, आम लोगों से लेकर बड़े अफसरों तक, सब कुछ।
और यही उनकी लिखने की शैली पक्की हुई?
बिल्कुल, वो तेज तर्रार, कसी हुई, एकदम असरदार शैली। और उनकी शुरुआती मशहूर किताबें प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स,
हाँ, 1888 में आई थी,
और सोल्जर्स 3 भी उसी साल। इन सब के लिए कहानियां यहीं से मिली। भारत में अंग्रेजों की जिंदगी, उनका अकेलापन, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बड़ी बेबाकी से लिखा।
और फिर वो लंदन लौटे?
हाँ, 1889 में। और कहते हैं उनकी शोहरत उनसे पहले पहुंच चुकी थी, रातों रात साहित्यिक सनसनी बन गए।
फिर शादी?
हाँ, 1892 में एक अमेरिकी महिला थी, कैरोलाइन बैलिस्टियर, उनसे शादी की और कुछ साल अमेरिका में भी रहे, वर्मोंट में।
वो दौर उनके लिए अच्छा रहा लिखने के लिहाज से?
बहुत बहुत रचनात्मक। द जंगल बुक वहीं लिखी उन्होंने 1894 में, और कैप्टन्स करेजस भी 1897 में।
लेकिन अमेरिका छोड़ना पड़ा उन्हें?
हाँ, अपने साले से कुछ झगड़ा हो गया था, काफी कड़वाहट के साथ उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा।
और फिर उनकी जिंदगी में दुखद घटनाएं भी हुईं।
हाँ, त्रासदियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। 1899 में उनकी बड़ी बेटी जोसेफीन, सिर्फ 6 साल की थी, निमोनिया से उसकी मौत हो गई।
ओ, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, कहते हैं इस गम से वो कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए, और इसके बाद उनके लेखन में एक संजीदगी, एक गहरा दर्द आ गया।
वो इंग्लैंड वापस आ गए फिर?
हाँ, और ससेक्स में बेटमेंट्स नाम का एक पुराना घर खरीदा, वहीं बस गए, वो उनकी आखिरी पनाहगाह बना। वक्त के साथ वो थोड़े और निजी होते गए, राजनीतिक तौर पर भी ज्यादा रूढ़ीवादी, खासकर जर्मनी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे।
और फिर पहला विश्व युद्ध?
हाँ, और 1915 में उन पर सबसे बड़ा पहाड़ टूटा। उनका इकलौता बेटा जॉन पहले विश्व युद्ध में फ्रांस में बैटल ऑफ लूज में मारा गया।
और उसका शव भी नहीं मिला?
नहीं, कभी नहीं मिला। इस सदमे ने तो उन्हें अंदर तक हिला दिया।
उन्होंने बाद में युद्ध स्मारकों के लिए भी काम किया?
हाँ, अपना बहुत सारा वक्त और ऊर्जा इम्पीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन को दी, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों की कब्रों की देखभाल करता था। वो जो स्मारकों पर लिखा जाता है ना, देयर नेम लिविथ फॉर एवर मोर,
हाँ,
वो पंक्ति बाइडल से उन्होंने ही चुनी थी।
और उनका निधन कब हुआ?
1936 में, पेट के अल्सर के फटने से उनका निधन हो गया।
तो बॉम्बे की धूप से लेकर इंग्लैंड की उदासी, शोहरत से लेकर गम तक, सब कुछ उनके लेखन में झलकता होगा।
बिल्कुल, सारे तजुर्बे उनके लब्जों में ढलते गए।
चलिए अब उनकी कुछ सबसे अहम रचनाओं और उनमें छिपे विचारों पर गौर करते हैं। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स का जिक्र तो हुआ, फिर आई बैरक रूम बैलेड्स 1892 में।
हाँ, ये कविताएं एक तरह से कह सकते हैं क्रांतिकारी थीं।
क्यों?
क्योंकि इनमें आम ब्रिटिश सिपाही की बोली, लंदन की खास कॉकनी जबान, उसका इस्तेमाल किया गया था।
हाँ, मशहूर कविता गंगा दीन इसी में है।
बिल्कुल, जिसमें एक भारतीय पानी पिलाने वाले भिश्ती की वफादारी का जिक्र है। हालांकि वो नजरिया आज हमें थोड़ा जटिल लग सकता है, पर उन्होंने आम सिपाही की दुनिया और जबान को साहित्य में जगह दी, ये उस वक्त बड़ी बात थी।
फिर आती है द जंगल बुक 1894-95। इसे तो ज्यादातर लोग बच्चों की किताब ही समझते हैं।
हाँ, पर यह सिर्फ बच्चों की कहानियों का संग्रह नहीं है, ये असल में कानून, समुदाय, पहचान, प्रकृति बनाम सभ्यता, इन जैसे गहरे मुद्दों पर एक रूपक है, एक एलिगरी है।
जंगल का कानून वाला विचार?
हाँ, झुंड की ताकत भेड़िया है और भेड़िये की ताकत झुंड है। ये समाज के नियमों और एक दूसरे पर निर्भरता पर एक टिप्पणी है। इसमें एक तरह की आदिम सच्चाई है, पौराणिक कथाओं जैसी ताकत है, जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है।
और फिर किम 1901 जिसे कई आलोचक उनका सबसे बेहतरीन उपन्यास मानते हैं, क्या खास है इसमें?
किम वाकई एक अनूठी रचना है। ये किम बिल ओहारा नाम के एक अनाथ आयरिश लड़के की कहानी है जो औपनिवेशिक भारत की सड़कों पर पलता बढ़ता है। वो एक तिब्बती लामा का चेला बनता है और साथ ही अनजाने में ग्रेट गेम का हिस्सा भी बन जाता है।
ग्रेट गेम मतलब वो जासूसी वाला खेल?
हाँ, मध्य एशिया में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच जो जासूसी और रणनीतिक खींचतान चल रही थी उसका नाम था ग्रेट गेम। किम की खासियत यह है कि ये उस दौर के हिंदुस्तान की जबरदस्त विविधता को बड़ी बारीकी और सहानुभूति से दिखाता है।
अच्छा,
इसमें अलग अलग मजहब, जाति, पेशे के लोग हैं। अंग्रेज, पठान, बंगाली बाबू, तिब्बती लामा सब एक साथ नजर आते हैं। उनकी दुनिया टकराते भी है, जुड़ती भी है। ये दो संस्कृतियों के बीच पहचान की तलाश का भी एक गहरा चित्रण है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि नजरिया आखिरकार औपनिवेशिक ढांचे के भीतर ही रहता है।
इसके बाद आई जस्टिस की रोरीज 1902, ये बेटी की याद में लिखी थी।
हाँ, अपनी बेटी जोसेफीन की याद में। ये भाषा और लय के खेल वाली मजेदार कहानियां हैं। हाथी की सूंड कैसे लंबी हुई, ऊंट का कुबड़ कैसे बना, बच्चों के लिए।
और उनके आखिरी दौर की कहानियां जो विश्व युद्ध के बाद लिखी।
हाँ, जैसे मैरी पोस्टगेट या द गार्डनर, इनमें युद्ध का सदमा, मनोवैज्ञानिक चोटें, नुकसान का एहसास वो ज्यादा गहरा है, ज्यादा जटिल है। उनकी स्टाइल भी यहाँ ज्यादा सांकेतिक, ज्यादा मॉडर्न लगती है, शुरुआती कहानियों की सीधी बात से थोड़ी अलग।
तो अगर हम उनके मुख्य विषयों को समेटना चाहें
तो देखो, साम्राज्य और उसका तंत्र, कानून और व्यवस्था की जरूरत, पहचान और अपनेपन की तलाश, कर्तव्य और बलिदान का विचार जिसे वो अक्सर मर्दानगी से जोड़ते थे, तकनीक का असर, अलग अलग संस्कृतियों का टकराव, गलत फहमियां, बचपन की मासूमियत बनाम बड़े होने की जिम्मेदारियां, और युद्ध और निजी त्रासदियों के गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म, ये सब उनके काम में बार बार आता है।
इन सब के लिए उन्हें पहचान भी खूब मिली। सबसे बड़ा सम्मान तो 1907 का नोबेल पुरस्कार ही था।
हाँ, साहित्य के लिए ये सम्मान पाने वाले वो पहले अंग्रेजी लेखक थे और उस वक्त सबसे कम उम्र के भी, सिर्फ 41 साल के थे।
स्वीडिश एकेडमी ने उनकी किन बातों की तारीफ की थी?
उन्होंने उनकी अवलोकन की शक्ति, कल्पना की मौलिकता, विचारों की ताकत और वर्णन की असाधारण प्रतिभा की तारीफ की थी। ये दिखाता है कि उनकी कहानियों में जो भारत और साम्राज्य के बारे में थी, कुछ ऐसा था जो दुनिया भर के पाठकों को जोड़ रहा था।
दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिलने वाले कई सम्मान ठुकरा दिए, जैसे पोएट लॉरिएट और नाइटहुड।
हाँ, ऐसा कहा जाता है। शायद वो अपनी आजादी बनाए रखना चाहते थे ताकि सरकार की नीतियों की आलोचना करने की गुंजाइश रहे, कौन जाने।
लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों से माने डॉक्टरेट ली उन्होंने।
हाँ, वो ली। शायद ये उस नौजवान किपलिंग के लिए एक तरह का सम्मान था जो कभी इन संस्थानों में पढ़ नहीं पाया था।
किपलिंग की विरासत, मतलब आज हम उन्हें कैसे देखते हैं, ये बड़ा पेचीदा मामला है।
हाँ, बहुत। अपने जमाने में तो वो शायद दुनिया के सबसे मशहूर लेखक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद और खासकर जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हुआ, उनकी छवि पर साम्राज्यवाद और नस्लवाद के पैरोकार का ठप्पा लग गया। उनकी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई।
जॉर्ज ऑरवेल ने उन्हें अच्छा बुरा कवि कहा था।
हाँ, 1942 में। मतलब लिखने की कला तो जबरदस्त, पर विचार आपत्तिजनक। एक वक्त तो ऐसा आया जब अकेडमिक दुनिया ने उन्हें लगभग भुलाई दिया था।
लेकिन फिर
20वीं सदी के आखिर में उनका एक तरह से पुनर्मूल्यांकन शुरू हुआ। टी.एस. एलियट और बोर्खेस जैसे बड़े लेखक तो हमेशा उनकी साहित्यिक कला की तारीफ करते रहे थे। फिर पोस्ट कॉलोनियल आलोचकों ने उन्हें सिर्फ साम्राज्य का भोपू कहकर खारिज करने के बजाय उनके लेखन को साम्राज्यवादी मानसिकता के एक जटिल, अक्सर विरोधाभासी दस्तावेज की तरह पढ़ना शुरू किया।
तो आज क्या स्थिति है?
देखो, आज वे वो विवादों में हैं। उनके साम्राज्यवादी और कई बार नस्लीय लगने वाले विचार वो आज हमें बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा, कहानी गढ़ने की वो कमाल की ताकत, भाषा पर पकड़ और इंसानी जज्बातों, वफादारी, गम, जिंदगी में मतलब की तलाश की उनकी गहरी समझ, उसको नकारा नहीं जा सकता।
हाँ।
ब्रिटिश साम्राज्य और उसके असर को समझने के लिए वो आज भी अहम है।
चलिए अब उनके कुछ मशहूर कथनों पर आते हैं। एक तो वो पंक्ति है जो बहुत दोहराई जाती है, पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है और दोनों कभी नहीं मिलेंगे।
हाँ, द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट 1889 से, पर ये शायद किपलिंग की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली पंक्ति है। इसे हमेशा अधूरा सुनाया जाता है।
अच्छा, पूरा क्या है?
अगर आप आगे पढ़ें तो मतलब बदल जाता है। वो कहते हैं, लेकिन जब दो ताकतवर इंसान आमने सामने खड़े होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आए हों, तब न पूरब रहता है न पश्चिम, न सरहद, न नस्ल, न पैदाइश।
अरे, तो ये तो व्यक्तियों के बीच सम्मान की बात है, सीमाओं से परे।
बिल्कुल, ये संस्कृतियों के हमेशा अलग रहने की बात नहीं करती।
ये तो कमाल की बात पता चली। एक और बहुत मशहूर कविता है अगर, जिसकी शुरुआत है, यदि तुम अपना होश बनाए रख सको जब सब अपना होश खो रहे हों और दोष तुम पर मर रहे हों।
हाँ, ये कविता तो अंग्रेजी समाज में स्टोइसिज्म मतलब आत्मसंयम, अनुशासन, मुश्किल में शांत बने रहने का प्रतीक बन गई। एक पिता की अपने बेटे को नसीहत जैसी है।
और उनका ये कहना भी कितना सही है, शब्द निस्संदेह मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली औषधि है।
बिल्कुल, भाषा की ताकत पर उनका गहरा यकीन दिखाता है ये।
लेकिन फिर एक ऐसी कविता भी है जो उनकी सबसे ज्यादा आलोचना का कारण बनी, द व्हाइट मैन्स बर्डन।
हाँ, श्वेत व्यक्ति का बोझ 1899। हाँ, उसकी पंक्तियां हैं, उठाओ श्वेत व्यक्ति का बोझ, भेजो अपनी सर्वश्रेष्ठ संतान, बांधो अपने बेटों को निर्वासन में, अपने बंधकों की जरूरत पूरी करने।
ये उन्होंने अमेरिका को फिलीपींस पर कब्जा करने के लिए उकसाने के तौर पर लिखी थी।
ये उस सोच का प्रतीक बन गई जो उपनिवेशवाद को गोरों की एक नैतिक जिम्मेदारी मानती थी पिछड़ी नस्लों को सभ्य बनाने का बोझ। ये आज किपलिंग के साम्राज्यवादी नजरिए का सबसे बदनाम उदाहरण है।
एक और पंक्ति का जिक्र था मोगली के बारे में।
हाँ, जंगल बुक की कहानियों में से अंत में सभी मोगली जंगल छोड़ देते हैं। ये बचपन की मासूमियत से निकलकर वयस्क समाज की जिम्मेदारियों और जटिलताओं की ओर जाने का जो अनिवार्य बदलाव है उसे दिखाती है।
किपलिंग की कहानियों पर फिल्में भी बहुत बनी है। डिज्नी की द जंगल बुक तो शायद सबसे मशहूर है, 1967 वाली एनिमेटेड और 2016 वाली लाइव एक्शन।
हाँ, और इन फिल्मों ने किरदारों को तो घर घर पहुंचा दिया, मोगली, बलू, बघीरा। लेकिन किपलिंग की मूल कहानियों की जो गहराई थी, उनके रूपक, उनके थोड़े अंधेरे पहलू, वो काफी हद तक हल्के फुल्के संगीत और कॉमेडी में बदल गए।
हाँ, ये तो है।
ये दिलचस्प है कि डिज्नी के वर्जन ने शायद किपलिंग की आम छवि को उनके असल लेखन से ज्यादा प्रभावित किया है।
और कोई फिल्म जो कहानी के ज्यादा करीब हो?
जॉन हस्टन की फिल्म द मैन हु वुड बी किंग 1975, जिसमें शॉन कॉनरी और माइकल केन थे, उसे ज्यादा वफादार माना जाता है। वो उस कहानी के रोमांच, महत्वाकांक्षा और जो दुखद अंत है उसे बखूबी पकड़ती है।
पुरानी फिल्में भी बनी थी, गंगादीन।
हाँ, गंगादीन 1939, कैप्टन्स करेजिस 1937, ये अक्सर देशभक्ति और रोमांच पर ज्यादा जोर देती थीं। किम जैसी जटिल किताब का अच्छा फिल्मी रूपांतरण हमेशा मुश्किल रहा है।
रेडियो पे ज्यादा सफल रहे रूपांतरण।
हाँ, शायद इसलिए कि रेडियो किपलिंग की भाषा की लय और उनके कहानी कहने के अंदाज को बेहतर पकड़ पाया।
तो इन सारी बातों के बाद किपलिंग को लेकर हमारे जहन में क्या सवाल रह जाता है, क्या सोचने पर मजबूर करते हैं वो हमें?
देखिए, किपलिंग हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो सवाल है, महान कला और ऐसी विचारधाराएं जिन्हें आज हम समस्याग्रस्त मानते हैं, उनके बीच क्या रिश्ता है? हम एक ऐसे लेखक की कला की तारीफ कैसे करें जिसका दुनिया को देखने का नजरिया आज के हमारे मूल्यों से टकराता हो?
क्या हम कलाकार को उसके संदेश से अलग करके देख सकते हैं?
या फिर उनकी कहानी कहने की असली ताकत इसी बात में है कि वो अपने वक्त की, जैसे कि साम्राज्य का दौर था, उसकी सच्चाइयों और इंसानी हालत की जटिल, अक्सर विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं।
ये सोचने की बात है कि क्या साहित्य को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से पूरी तरह काटकर देखा जा सकता है, या उसकी तमाम उलझनों और विरोधाभासों को स्वीकार करते हुए ही उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ज्ञान गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। क्लोजिंग नरेशन पहले से रिकॉर्डेड। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।